पृष्ठ संख्या 10, भास का आविर्भाव। भारतीय मनीषी महाकवियों ने देशकाल के परिच्छेद से मुक्त अखंड भारतीय दृष्टि को अक्षुण रखते हुए अपने को काल कुल की सूचना से विमुक्त रखा है। भारती भाषा भारतीय होने से भारतवासी होने की सूचना के लिए पर्याप्त है, अतः इससे अधिक लिखना अपने को किसी संप्रदाय एवं किसी प्रांत से आबद्ध करना है जो इन मनीषियों को अभीष्ट नहीं था। संस्कृत के विभिन्न आचार्यों ने भास का समय 900 वर्षों में दोलायमान रखा है। एक, मीणे दीक्षित गणपति शास्त्री, हर प्रसाद शास्त्री, खुपेरकर, कीरत और टटके ने ईसा पूर्व छठी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य में माना है। दो, जागीदार कुलकर्णी, शेम्ब बनेकर, चौधरी, ध्रुव और जायसवाल ने ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में माना है। तीन, कोनो, लिडेन्यू, सरूप, सौली और बेलर ने द्वितीय शताब्दी में माना है। चार, बनर्जी शास्त्री, भंडारकर, जेकोबी, जौली और कीथ ने भास का समय ईसा की तृतीय शताब्दी में माना है। पाँच, लेस्ली और विंटरनित्ज ने ईसा की चतुर्थ शताब्दी इनका समय माना है। छ, शंकर ने ईसा का पंचम एवं षष्ठ शतक माना है। इनके अतिरिक्त आचार्यों ने भी इनके समय के लिए अपना मंतव्य व्यक्त किया है, किंतु कालिदास आदि ने भास का नाम निर्दिष्ट किया है, अतः चतुर्थ शताब्दी से आगे इनको ले जाना असंभव नहीं है। डॉक्टर पुसालकर ने भास के अंतःसाक्ष्य के आधार पर इनका समय ईसा से पूर्व चतुर्थ एवं पंचम शतक माना है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण, अविमारक और स्वप्नवासव दत्तम में जो प्राचीन राज्यों का उल्लेख मिलता है, वे राज्य चतुर्थ शतक में वर्तमान थे। अस्मत् संबंधो मगधः, काशीराजो वांगः, सौराष्ट्रो मिथिलः, सूरसेनः, एते नानार्थेर् लोभयन्ते, गुणैर्मां कस्ते वैतेषां पात्रतां याति राजा। प्रतिज्ञा यौगंधरायण 2/8। पृष्ठ संख्या 11। स्वप्नवासव दत्तम में उज्जैन के राजा प्रद्योत, कौशाम्बी के राजा उदयन और मगध के राजा दर्शक का उल्लेख मिलता है। ईसा से पूर्व छठी शती तक ही इनका राजत्व समाप्त हो चुका था। भास ने दर्शक की राजधानी राजगृह कही है, किंतु अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अतः मौर्य काल से पूर्व इनका समय मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर डॉक्टर पुसालकर ने भास का समय महापद्म नंद का राजत्व बताया है। इसके शासन काल में समस्त उत्तर भारत इसके अधीन था। भास की निर्दिष्ट राज्य सीमा महापद्म नंद के राज्य से साम्य रखती है। AMP अय्यर ने भी इसका समर्थन किया है। अय्यर का अनुमान भास को कौटिल्य का सामयिक बताता है, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र के 10वें अधिकरण के तृतीय अध्याय में प्रतिज्ञा यौगंधरायण के अधोलिखित पद्य का उद्धरण देते हैं। नवम शरावम सलीलैः सुपूर्णम सुसंस्कृतम दर्भकृतोत्तरीयम तत्तस्यमा भून्नरकं सगच्छेद् यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत। प्रतिज्ञा यौगंधरायण 4/2। प्रतिज्ञा यौगंधरायण के तृतीय अंक में ही चंदम गिल दिलाहु मुंच मुंच चंदम यदिड मुंचेशी मुहं दे पाडिय मुचावइस्सम एशे दुट्ट अश्ये परिभट्टे आ अच्छेदी। इस गद्य में चंद शब्द चंद्रगुप्त मौर्य का और राहु राक्षस का प्रतीक है। इस प्रतीक के आधार पर भास को ईसा पूर्व चतुर्थ शती का माना जाता है। भास के नाटकों के भरत वाक्य में राज सिंह पद आया है और मौर्य राजा राज सिंह कहे जाते थे। अशोक ने सारनाथ के स्तंभ में तीन सिंहों को प्रतीक रूप में अंकित किया है। तीन सिंहों का प्रतिनिधित्व चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक करते हैं। इन तीनों मौर्यवंशी राजाओं के प्रताप की सूचना सिंहों से होती है। अय्यर की दृष्टि में चंद्रगुप्त ही राज सिंह है। चाणक्य की प्रतिज्ञा के समान यौगंधरायण की प्रतिज्ञा होने से ये दोनों समसामयिक हैं। जीव सिद्धि के सहाय से चाणक्य ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। यौगंधरायण ने श्रमणक के सहयोग से उज्जयिनी नरेश पद्योत को अधीनस्थ किया। पृष्ठ संख्या 12। चंद्रगुप्त का विवाह नंदवंश की कुमारी दुर्धर से किया गया है। यह विवाह पद्मावती की ओर संकेत करता है। नीलगिरी हाथी की प्रतीकात्मकता पौरुष के प्रसिद्ध हाथी की समकक्षता को उपस्थित करता है। भारत में शत्रु की सेना के शांत होने की चर्चा सेल्यूकस की सेना के दमन करने की ओर निर्देश करती है। इस प्रकार भास के साथ कौटिल्य के सिद्धांतों का समन्वय होने से ईसा से पूर्व चतुर्थ शताब्दी इनका समय अय्यर ने माना है। अय्यर ने अपने भास के उक्त काल के समर्थन में यह भी कहा है कि हिमालय से विंध्य पर्वत पर्यंत और आसमुद्र पृथ्वी पर चंद्रगुप्त का राज्य था। इसी को राजसिंह कहा गया है। डॉक्टर नेमी चंद्र शास्त्री ने महाकवि भास में अय्यर के इन सिद्धांतों की अवतारणा कर भास और चाणक्य के द्वारा प्रस्तुत चित्रण के आधार पर भास को चाणक्य से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है। इसी प्रकार पुसालकर ने राजसिंह को नंदवंश के लिए प्रयुक्त माना है। स्टेनकोनों ने राजसिंह का क्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम से समन्वय किया है। ध्रुव ने शुंगवंशीय पुष्यमित्र से समन्वय किया है। जायसवाल ने कड़व नारायण और मीडे ने इसको उदाई माना है। नाटक के भारत वाक्य के आधार पर विंध्य और हिमाचल से संबेष्टित समस्त उत्तरी भारत किसी एक राजा के अधीन था। यह स्थिति पूर्व चतुर्थ शताब्दी की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट के समय की है। अतः हरप्रसाद शास्त्री ने राजसिंह के रूप में नंदवंश के किसी राजा को मान्यता दी है। अतः भास को ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी में होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक विभिन्न स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शास्त्री ने भास को 4 या 3 ईसा पूर्व माना है। पृष्ठ संख्या 13। डॉक्टर विंटरनित जिन्हें कालिदास की भाषा और शैली से सानिध्य के कारण अश्वघोष का समय ईस्वी की द्वितीय शती और भास को तृतीय शती का माना है। डॉक्टर कीथ ने कालिदास के उल्लेख के आधार पर भास को अश्वघोष और कालिदास का मध्यवर्ती माना है। कालिदास को चतुर्थ शतक का मानने पर भास को 350 वर्ष से पूर्व मानना पड़ेगा। स्टेनकोनों ने विंटरनित्ज के विरुद्ध भास को ईसा की द्वितीय शती का माना है। डॉक्टर दासगुप्त ने गणपति शास्त्री एवं अन्य विदेशीय मनीषियों के विचार की आलोचना करते हुए भाषा और शैली के आधार पर अश्वघोष तथा कालिदास को मध्यवर्ती ही माना है। क्षत्रप राजाओं के आश्रित होने के कारण श्री कृष्ण से संबद्ध कथा वस्तुओं के निर्वाह में ये अधिक सफल रहे हैं। स्टेनकोनों ने क्षत्रपों का समय ईसा का द्वितीय शतक माना है। अतः इसी समय नाटककार भास की स्थिति होनी चाहिए। प्रथम रुद्रसिंह के समय में ही भास का जन्म होना माना है। डॉक्टर ए पी बनर्जी ने भास का समय 150 ईसा से 250 ईसा के मध्य माना है, अर्थात दूसरी शती के बाद और तीसरी शती से पूर्व इनका समय माना है, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म और विष्णु के उपासक थे। प्रदर्शित सूक्तियों के आधार पर भास का समय कालिदास से पूर्व निर्विवाद सिद्ध है। अनेक मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर नेमीचंद्र शास्त्री ने भास का समय ईसा पूर्व 327 के लगभग माना है। इसकी पुष्टि वर्णित समाज व्यवस्था के आधार पर भी होती है, अर्थात ईसा पूर्व चतुर्थ शती में अधिक आग्रह है। पृष्ठ संख्या 14। डॉक्टर सूर्यकांत ने भास का समय 150 ईस्वी से 250 ईस्वी माना है। डॉक्टर कांतानाथ शास्त्री तैलंग ने ईसा पूर्व 500 इनका जन्मकाल माना है। यह सत्य है कि भास के समय तक पाणिनि का वर्चस्व प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। कौटिल्य अर्थशास्त्र की भी चर्चा नहीं है। माहेश्वर प्रणीत योग शास्त्र उपलब्ध नहीं है, किंतु पांचाल योग शास्त्र की अवगति इनको नहीं थी। मानवीय धर्मशास्त्र संभवतः गौतम लिखित मानव धर्मशास्त्र का बोधक हो सकता है। प्रतिमान नाटक की पंक्ति में इन शास्त्रों की चर्चा उपलब्ध है। भोः कश्यप गोत्रो अस्मि सांग वेद मधीये मानवीयम् धर्मशास्त्रम् माहेश्वरम् योगशास्त्रम् बारहस्पत्यमर्थशास्त्रम् प्राचेतमम् श्राद्धकल्पश्च। इन प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर भास को ईसा पूर्व तृतीय शतक से चतुर्थ शतक के मध्य में मानना अनुचित नहीं है। टी कृष्णमाचारी ने अपना विशेष निर्णय प्रस्तुत किए बिना ही गणपति शास्त्री का मत प्रदर्शन करते हुए उपसंहार किया है।